नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है।
प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब सकुशल हैं और प्रभु के वचन की संगति में आनंदित हैं। मैं यह भी आशा रखता हूं कि आप सब इस बाइबल अध्ययन से अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, अब तक हम उत्पत्ति की पुस्तक के 30 अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 31 को आरंभ किया था, जिसमें हमने याकूब के साथ हुए धोखे को देखा जो उसके मामा ने उसके साथ किया था, परंतु परमेश्वर ने हस्तक्षेप कर उसे आशीषित किया। तब वह अपने मामा के घर से जाने की प्रेरणा परमेश्वर से पाता है कि उस देश को लौट जाए जिसे उसने इब्राहिम व इसहाक को देने के लिए कहा था। तब वह अपनी दोनों पत्नी को बुलाकर वहां से निकल जाने की योजना बनाता है और आज हम उसे आगे क्या होता है उसे देखेंगे कि वह मामा के घर से किस प्रकार निकल कर जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम आज के अध्ययन को प्रारंभ करें, आइए हम परमेश्वर से इसके लिए सहायता मांगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको अपने वचन से सिखाइए और अपने प्रेम में बढ़ाइए ताकि आपका वचन हमारे हृदयों से बातचीत कर सके। हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हम उन महान बातों को सीख सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो दुखी व निराशा में हैं या किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, तो प्रभु जी उन पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और उन्हें हर एक बीमारी और निराशा से छुटकारा दीजिए, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा सब कुछ संभव है। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़कर इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं, जहां पर लिखा है, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूं जहां तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। मित्रों, यहां पर परमेश्वर याकूब से कहते हैं कि मैं बेतेल का ईश्वर हूं। वह याकूब को फिर से पीछे ले जाते हैं और स्मरण दिलाते हैं कि उससे पहले भी बेतेल में दर्शन दे चुके हैं जब वह घर से भाग रहा था। वह याकूब की पहले रात थी जब वह परिवार वालों से अलग था और यह स्थान बेतेल था। परमेश्वर ने याकूब से कहा, अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। परमेश्वर चाहता है कि वह हारान को छोड़ दे, क्योंकि इस समय याकूब के 11 पुत्र उस वातावरण में बढ़ रहे हैं और वे अभी से ही कुछ ऐसी बातों को सीख गए हैं जिसे उन्हें नहीं सीखना चाहिए था। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि याकूब और उसके पुत्र इस स्थान से, जहां पर मूर्ति या देवी देवताओं की पूजा होती है, निकालकर अपने देश में जाएं। जिस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम को देवी देवताओं की मूर्ति पूजक देश से निकालकर, ठीक उसी तरह याकूब को भी उसके मामा के देश से निकालना चाहते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 31 अध्याय उसके 14 और 15 पद को पढ़ें। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अभी भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराई न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। वे कह रही थी कि पिता की पुत्री होने के नाते उन्हें भी कुछ अंश या संपत्ति में से कुछ मिलना चाहिए और लाबान को इतना विरोधी होने से दूर रहना चाहिए था। परंतु प्रिय मित्रों, इस बूढ़े लाबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसे मसीही हैं जो अपने रुपयों को अपने तरीके से उपयोग में लाते हैं और जब उन्हें दूसरे के रुपए दिए जाते हैं तो उसका भी उपयोग उसी रीति से करते हैं, इसलिए लोग उन पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। मैं सोचता हूं कि किसी व्यक्ति की यह एक वास्तविक परीक्षा है। मैं आपको कुछ और कहानियां बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, अंत में। मसीही और मसीही अगुए रुपए के साथ वे सब कुछ करते हैं जो नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 16 पद में लिखा है, सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है सो हमारा और हमारे लड़के वालों का है, अब जो कुछ भी परमेश्वर ने तुझसे कहा है सो कर। मैं सचमुच में इन दोनों स्त्रियों की प्रशंसा करता हूं कि वे उससे कहते हैं कि जो वह करना चाहता है करे। वे उसके साथ खड़ी होती है और संभवतः वे सोचती है कि उनके पिता ने उन्हें स्पष्ट रूप से लूट लिया है। अब आगे हम याकूब के हारान से भागने के बारे में देखते हैं, तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय उसके 17 से 19 पद को पढ़ें। तब याकूब ने अपने लड़के वालों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पदन राम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया। लाबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। मित्रों, यहाँ पर हम कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहते हैं या प्रगटीकरण पाते हैं जो वास्तव में रुचिदायक है। याकूब उठा, उसने जल्दीबाजी से इस स्थान को छोड़ दिया। मित्रों, आप जरा याद कीजिए कि याकूब इसी तरीके से अपने घर से भागा था जब वह अपने भाई के डर से बचता फिर रहा था। अब वह अपने मामा को छोड़कर जा रहा है, लेकिन इस समय सब गलती उसकी नहीं थी। यह बात सच है कि वह इसके लिए तैयार था। उसके सभी जानवर और सेवक वहां से निकलने के लिए तैयार थे। हम देखते हैं कि राहेल ने अपने पिता के घर से गृह देवता की चोरी की। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वहां लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि याकूब के पुत्र उनके मध्य में बड़े हों। परंतु आप देखें कि राहेल, जो एक देवी देवताओं की पूजा होने वाले घर में पली और बढ़ी है, और वह चाहती है कि वह अपने साथ गृह देवता को भी लेकर जाए। वो अभी भी पुराने विश्वास और विचारों से जुड़ी थी। यहां तक कि याकूब ने भी सोचा कि वह परमेश्वर से दूर भाग जाएगा जब उसने एक लड़के के रूप में ही घर को छोड़ा था। तब उसने ऐसा ही सोचा था, परंतु बेतेल में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने वहां पाया कि परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकता है। बहुत वर्षों के बाद दाऊद ने भजन संहिता 139 में लिखा, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं व तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। मित्रों, मृत्यु भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि आप चांद पर भी जाकर परमेश्वर से दूर या अलग नहीं हो सकते हैं, अर्थात आप किसी भी रीति से परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकते हैं। हमने देखा कि लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए गया हुआ था और याकूब इसी इंतजार में था कि कब लाबान अपने भेड़ों का ऊन कतरने के लिए जाएगा, और संभवतः लाबान अपने घर से कुछ मील दूरी पर ऊन कतरने के लिए गया था जहां उसकी भेड़ें चरने के लिए गई थी, और वह क्षेत्र बहुत बड़ा भी था। आज भी वह स्थान है और चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं क्योंकि वह स्थान काफी बड़ा है। जब लाबान अपने घर से बाहर ऊन कतरने के लिए गया हुआ था तब याकूब यह बात लाबान को बताने से टाल जाता है कि वह उससे वह घर को छोड़कर जा रहा है। मित्रों, अब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय उसके 20 और 21 पद को पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, सो याकूब लाबान आरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको ना तो बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। वे सब भागकर गिलाद की पहाड़ी में आते हैं जो यर्दन नदी के पूर्व में है। वे बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे। तो आइए हम उत्पत्ति 31 अध्याय उसके 22 और 23 पद को भी पढ़ें। लिखा है, तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, तो उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। मित्रों, वास्तव में लाबान बहुत तेजी से यात्रा कर रहा था ताकि वह जल्द से जल्द याकूब को पकड़ ले। आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लाबान याकूब के लिए कोई अच्छी बात नहीं सोच रहा है जैसे याकूब चाहता है। मेरा तो यह मानना है कि लाबान इतना क्रोधित था कि वह याकूब को मार डालने से भी नहीं हिचकता, परंतु परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय उसके 24 पद में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। मित्रों, दूसरे शब्दों में कहें कि तू सावधान रह कि तू क्या करता है और क्या कहता है, अर्थात अपने कहने व करने में सावधान रहना। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। अब मामा लाबान की सुनिए, जो एक चतुर या धूर्त बदमाश है। वह उसके पीछे आ रहा है और सांस में आग और पत्थर उगल रहा है, और चाहता है कि उन सब वस्तुओं को पुनः प्राप्त कर ले जिसे लेकर याकूब जा रहा था। संभवतः याकूब को मारकर वह अपनी दोनों बेटियों और उनके बच्चों को भी वापस लाना चाहता था, क्योंकि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय और उसके 26 और 27 पद में पढ़ते हैं। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया जैसा कोई तलवार के बल से बंदी बनाए गए हैं। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजाते हुए और गीत गवाते विदा करता। मित्रों, यहाँ पर मामा लाबान को देखिए कि वह कितना चतुर और कूटनीतिक है। वह चाहता है कि याकूब अपराध बोध महसूस करे कि उसने उसके परिवार का अपहरण कर एक अच्छे विदाई समारोह का अपमान किया है, अन्यथा वह एक शानदार विदाई समारोह के साथ उनकी विदाई करता। यही उसका कहना था, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वह ऐसा करता। तब वह मनोभाव में होकर निवेदन करता है। हम उत्पत्ति उसके 31 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं, तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चुभने तक न दिया, तूने मूर्खता की है। मित्रों, ये बेटे और उनके नाती पोते वे पहले से ही प्रचलित होने के लिए नियुक्त किए गए थे। जहां तक संसार के इतिहास से इनका संबंध है, हम उत्पत्ति उसके 31 अध्याय के 29 पद में आगे पढ़ते हैं, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। लाबान याकूब को अवगत कराता है कि वह भला नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे बुराई करने से रोक दिया। आगे उत्पत्ति 31 के 30 पद में पढ़ते हैं, भला अब तो अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर तू मेरे देवताओं को क्यों चुरा लाया? मित्रों, अब यहां पर वह चुराए गए देवताओं के बारे में पूछता है। वास्तव में याकूब को मालूम नहीं था कि राहेल ने गृह देवता की चोरी की है, इसलिए जब उसने लाबान को उत्तर दिया तो उसने घर से भागने के बारे में जानकारी दी और बिना यह जाने कि राहेल ने गृह देवता की चोरी की है। और उत्पत्ति उसके 31 अध्याय के 31 पद में लिखा है, याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। मित्रों, याकूब जानता था कि लाबान उसे व उसकी पत्नी व बच्चों को नहीं जाने देता, यहां तक कि जो कुछ उसका है उसे भी नहीं लेने देता। तब वह गृह देवता के चुराने के बारे में उत्तर देते हुए कहता है, जिसे हम उत्पत्ति 31 अध्याय के 32 पद में पढ़ते हैं, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीता ना बचेगा, मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। याकूब को यह पूरा भरोसा था कि किसी ने भी लाबान की गृह देवता को नहीं चुराया है। आप यहाँ पर देखिए कि याकूब लाबान पर विश्वास नहीं करता है, परंतु यदि आप सोचते हैं कि लाबान ने याकूब पर विश्वास किया तो आप गलत हैं। वे दोनों ही एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। यह एक आश्चर्य था कि वे दोनों 20 वर्ष तक शांति से रहे, क्या ऐसा नहीं है? हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 33 से 35 पद में पढ़ते हैं, यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी, सो लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूं। सो उसके ढूंढ ढाड़ करने पर भी गृह देवता उसको न मिला। मित्रों, लाबान को यही उम्मीद थी कि उसके दोनों बेटियों में से एक ने अवश्य गृह देवताओं को चुराया होगा। राहेल अपने आप में एक चतुर स्त्री थी, और यह सच है कि नहीं, क्योंकि वह भी अपने पिता की ही पुत्री थी। उसने उन गृह देवताओं को लेकर ऊंट के ऊपर रखने वाली लकड़ी के भीतर छिपा कर रख दिया था, जो बक्सा ऊंट के पीठ पर रखा जाता था। वह उस बक्से के ऊपर बैठ गई और अपने पिता से बहाना बनाया कि वह स्त्री धर्म से है। जब तक वह वहां ढूंढ ढाड़ रहा था वहीं बैठी रही। क्या ही वास्तविक तस्वीर हम इस परिवार में पाते हैं कि वे किस प्रकार के लोग थे। राहेल का अपने पिता के घर से तेराफीम को लेना जितना हम कल्पना करते हैं उससे भी अधिक गंभीर था, क्योंकि जिस किसी के पास वे गृह देवता होती थी वो परिवार का अगुआ माना जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी लाबान के पास है वह सब कुछ याकूब का हो जाता। यही कारण था कि लाबान इस बात से अत्यधिक व्यग्र हुआ। वह नहीं चाहता था कि याकूब उसकी और भी संपत्ति लेकर जाए, क्योंकि उसकी सोच में वह पहले से ही बहुत अधिक प्राप्त कर चुका था। यहाँ पर अब याकूब को थोड़ा भरोसा होता है कि वे गृह देवताओं को नहीं ढूंढ पाते हैं, और याकूब को पूरा भरोसा होता है कि गृह देवता यहाँ आसपास में नहीं है। वह अपने ससुर को डांटना चाहता है जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 36 पद में लिखा है, तब याकूब क्रोधित हुआ और लाबान से झगड़ने लगा, और याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मेरा अपराध क्या है, मेरा पाप क्या है कि तू इतने क्रोधित होकर मेरा पीछा किया। अब यहाँ पर याकूब शिकायत कर रहा है मानो उसने अपने महाविद्यालय की पढ़ाई को कठिनाई के साथ पूरा किया है और अब उसे उपाधि मिल रही है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 38 पद में हम पढ़ते हैं, इन 20 वर्षों तक मैं तेरे साथ रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, ना ही मैंने कभी तेरे मेढ़ों का मांस खाया। मित्रों, यहाँ तक कि याकूब को भोजन में मांस खाने को नहीं मिला, इसके लिए उसे कीमत देनी पड़ी अर्थात पैसा चुकाना पड़ा। अब आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 39 पद में पढ़ते हैं, जिसे जंगली जानवरों ने फाड़ा उसे मैं तेरे पास ना लाया, उसकी हानि मैंने ही उठाई, चाहे दिन को चुराया जाता चाहे रात को, तू तो मुझ ही से ले लेता था। मित्रों, उसका कोई बीमा नहीं था, यदि किसी भेड़ की या बकरी की चोरी होती तो उसे उनकी कीमत चुकानी पड़ती थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय उसके 40 पद में हम पढ़ते हैं, मेरी दशा ऐसी थी कि दिन को तो धूप और रात को पाला मुझे खा जाता था और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। उसे गर्मी में भी कोई छुट्टी नहीं मिली और जब ठंड बढ़ती तो उसे जानवरों के साथ घर के बाहर मैदान में ही सोना पड़ता और रहना पड़ता था। कई कई रात जंगली जानवरों से भेड़ों को बचाने के लिए उसे जागना पड़ता था। मित्रों, हम अब उत्पत्ति 31 अध्याय के 41 पद में पढ़ते हैं, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो तेरी ही दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए मैंने तेरी सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदला। यही सारी बातें हैं जो याकूब के साथ घटित हुई थी। यहाँ पर वह व्यक्ति है जो चतुर है, उसने सोचा कि वह अपने पापों से बचकर निकल जाएगा, परंतु परमेश्वर उसे उसके पाप के साथ से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा भी। याकूब ने अपने घर में रहते हुए आपको परमेश्वर के हवाले करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे अपने आप को मामा की अधीनता में समर्पित करना पड़ा। याकूब यहाँ अपने मामा के घर में इज्जत के साथ पत्नी लेने आया था, परंतु उसे दास या नौकर बना लिया गया, क्योंकि परमेश्वर पहलौठेपन के अधिकार को आदर देते हैं। लेकिन याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, इसलिए अपने ससुर के द्वारा धोखा उससे भी मिला अर्थात वो भी ठगा गया। याकूब जो छोटा था वह बड़ा बन गया था अपने घर में। उसके बाद उसे जब विवाह करनी पड़ी तो उसने सोचा कि ये बड़ी लड़की है, लेकिन वह छोटी लड़की को पाया। उसने स्वार्थी स्वभाव को प्रकट किया, जिसने यह दर्शाया कि उसने पहलौठेपन का अधिकार किस प्रकार प्राप्त किया है। मित्रों, उसने अपने स्वार्थी आत्मा को प्रकट किया। उसने अपनी माता को अपने हाथ पैर और गर्दन को बकरी के चमड़े से ढकने दिया, और बाद में हम देखेंगे कि उसके अपने ही पुत्र उसे भी लगभग इसी रीति से धोखा देंगे। उसके पुत्रों ने एक बकरी के बच्चे को मारा और उसके खून में यूसुफ के कुर्ते को डुबोया, और जो कि एक सुंदर और रंग बिरंगा कुर्ता था। उसने अपने पिता को उसके प्रिय पुत्र के लिए धोखा दिया, और वह भी अपने प्रिय पुत्र के कारण धोखा खाएगा जो यीशु था। वचन में लिखा है कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31 अध्याय उसके 42 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, यदि मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, मेरी ओर ना होता तो तू निश्चय ही अब मुझे खाली हाथ भगा देता। परमेश्वर ने मेरे दुख और मेरे हाथ को मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखा है, इसलिए उसने कल रात में मुझे झिड़का। याकूब का यह दिन कचहरी में बीत गया। उसने अपनी शिकायतों को रखा। अब वह लाबान को छोड़ने जा रहा है। वे दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और एक वाचा बांधते हैं। आगे हम देखते हैं कि लाबान और याकूब ने मिस्पा में वाचा बांधी। तो आइए हम उत्पत्ति उसके 31 अध्याय के 43 और 44 पद को पढ़ते हैं। तब लाबान ने उत्तर दिया और याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही बेटियां हैं, ये बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही है, और जो कुछ तू देखता है वह सब मेरा ही है। परंतु आज मैं अपनी इन बेटियों व इनसे उत्पन्न बच्चों से क्या कर सकता हूं। अब आ, मैं और तू एक वाचा बांधे जो तेरे और मेरे बीच में साक्षी ठहरे। आगे हम देखते हैं, तब याकूब ने पत्थरों को इकट्ठा कर एक ढेर लगाया और एक खंभा खड़ा किया और एक वाचा बांधी। आगे हम उत्पत्ति उसके 31 अध्याय के 48 और 49 पद में पढ़ते हैं। और लाबान ने कहा, यह ढेर आज मेरे और तेरे बीच साक्षी हो। अतः उसका नाम गलएद रखा और मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से अलग रहे तब यहोवा मेरी और तेरी चौकसी करता रहे। मित्रों, इस वाचा के शब्दों को जवान लोगों के समूह द्वारा और दूसरे समूह के लोगों के द्वारा आशीष वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं नहीं समझता कि इसे उस तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि यह दो धुरतों के बीच एक सौदा था जो एक दूसरे से चुराने वाले हैं और दूसरे के काम को वे करने वाले हैं, अर्थात उससे वो लाभ उठाने वाले हैं। यहोवा मेरी और तेरी चौकसी करता रहे, यही उनका कहना था। मानो वे यह कह रहे थे कि परमेश्वर अपनी दृष्टि हम पर रखे ताकि तुम मेरी चीजों को न चुराओ। इसके बाद वे अलग अलग हो गए। मिस्पा में पत्थरों का ढेर बिल्कुल यही बात को दोनों के बीच में दर्शाता है। और जो खंभा लाबान और याकूब के बीच एक सीमा रेखा के रूप में रखा गया था, जो उनकी वाचा को स्मरण दिलाता है, उन्होंने वादा किया कि वे एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात सीमा रेखा उन्होंने ही तय की है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 31 समाप्त होता है और हम अध्याय 32 में प्रवेश करेंगे। मित्रों, बाइबल में बहुत से महान अध्याय हैं और उनमें से 32 अध्याय भी एक है। यह अध्याय याकूब के जीवन के एक विशेष समय को दर्शाता है, फिर भी यह किसी भी तरफ याकूब के जीवन का परिवर्तन नहीं दिखाता है। यद्यपि वह शारीरिक जीवन जी रहा था, फिर भी अभी भी वह परमेश्वर का जन था। इसलिए हमें कहा गया है कि दूसरों का न्याय में सावधान रहना कि वे मसीही हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो देखने में तो मसीही नहीं लगते, परंतु मुझे ऐसा भरोसा है कि वे मसीही हैं। वे चाहे परमेश्वर के हाथ में हो या ना हो, वे सिर्फ मसीहियों के व्यवहार को नहीं करते हैं, बस वे कोई प्रमाण नहीं देते कि वे मसीही हैं। और यह व्यक्ति याकूब ने भी ऐसा ही कुछ प्रमाण नहीं दिया, सिवाय उस समय जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और याकूब ने परमेश्वर को जिस रीति से प्रतिसाद दिया। मित्रों, याकूब जो इस संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधि और गवाह है, वह एक बुरा गवाह बन गया, परंतु वह उसी के आगे नहीं बढ़ा, इसलिए परमेश्वर उसके साथ बातचीत करने जा रहे हैं। यदि मैं आपसे सच कहूं तो परमेश्वर उसे अपंग बनाने जा रहे हैं ताकि वह परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर हम सबको भी अनुशासित करते हैं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 6 पद में लेखक कहते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और यह उसका तरीका है, वह हमें अपने ही तरीके से अनुशासित करते हैं। लूत भी ऐसा नहीं लगता था कि वह परमेश्वर की संतान है, लेकिन वह था, क्योंकि पत्रस कहते हैं कि लूत धर्मी पुरुष था। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में आप इसे पढ़ सकते हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लूत निश्चित रूप से आग में से होकर निकला। वह सदोम और अमोरा के आग से बचकर निकला, परंतु परमेश्वर ने उसको अग्नि परीक्षा में डाल दिया था, और यही याकूब का भी अनुभव रहा। वह अपने महाविद्यालय का प्रमाण पत्र अपने कठिन परिश्रम के दौरान उसे पाया। उस कॉलेज का प्रधानाध्यापक और डीन मामा लाबान ही थे। अपने स्नातक की उपाधि पाने के दिन याकूब ने एक विदाई संदेश भी दिया। उसे इस उपाधि को पाने के लिए 20 साल लग गए और इसे पाने के लिए उसने वास्तव में बहुत कठिन परिश्रम किया, जबकि बूढ़े लाबान ने उसकी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। प्रत्येक 2 साल में याकूब का मामा उसके साथ नया समझौता या सौदा करता था, और यह हमेशा याकूब के हित में नहीं होता था, और यह अनुभव याकूब के साथ था जो उसने लाबान के यहाँ रहते हुए प्राप्त किया। मित्रों, अब हम उस परीक्षा में आते हैं जिसे परमेश्वर याकूब के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। परमेश्वर उससे बातचीत करेंगे और इस अध्याय अर्थात 32 में वह उसके संग संग चलेंगे। सबसे पहले मैं इस पद को कहना चाहता हूं जो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय और 29 पद में लिखा है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। मित्रों, यही याकूब का अनुभव भी था। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, याकूब अपने मार्ग पर आगे बढ़ा और परमेश्वर के दूत उससे मिले और याकूब ने उन्हें देखकर कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। अतः उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। मित्रों, परमेश्वर फिर से याकूब के साथ सीधी बातचीत करते हैं ताकि वह फिर से वापस अपने रास्ते पर आ जाए और वास्तविक फल उत्पन्न करने वाले स्थान में लौट आए, एक विशाल सेवा और उसके लिए एक गवाही दे सके। मित्रों, आइए हम अगले पद अर्थात उत्पत्ति 32 के 3 से 5 पद को पढ़ें। तब याकूब ने अपने भाई एसाव के पास सेईर प्रदेश में अर्थात एदोम में अपने आगे दूत भेजे। उसने उन्हें यह आज्ञा दी, तुम मेरे स्वामी एसाव से कहना, तेरा दास याकूब यह कहता है कि मैं लाबान के पास प्रवासी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने स्वामी के पास इसलिए समाचार भेजा है कि तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हो। मित्रों, अभी भी यह व्यक्ति उतना ही चालाक व चतुर है, यह सच है कि नहीं? वह ऐसे जाने नहीं दे रहा है। लाबान के साथ उसके अनुभव के पश्चात भी वह अपनी जन्मभूमि वापस लौट रहा है और वह उस दिन को याद करता है जब उसने 20 साल पहले अपने बड़े भाई एसाव को देखा था, जब एसाव उसे मार डालने की धमकी दे रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब पहले अपने दासों को भेजता है और उन्हें सिखा कर भेजता है। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए हम आज के अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले अध्ययन में हम अवश्य ही एक नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।